गंधा श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 38। श्री बादरायणी उवाच तेभ्या एवं प्रतिश्रुत्या विश्वरूपो महातापः पौरहित्यं वृत्तः चक्रे परमेणा समाधीना। श्री बादरायणी उवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा पौरहित्यं व्रतश्चक्रे परमेण समाधिना। श्री बादरायणी उवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा पौरहित्यं व्रतश्चक्रे परमेण समाधिना। श्री बादरायणी उवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा पौरहित्यं व्रतश्चक्रे परमेण समाधिना। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री बादरायणी उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तेभ्यः उन देवताओं को एवं इस प्रकार प्रतिश्रुत्य वचन देकर विश्वरूपः विश्वरूप महातपः महापुरुष पौरहित्यम पुरोहिति कार्य व्रत उनके द्वारा घिरा चक्रे करने लगे परमेण परम समाधिना मनोयोग से। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन देवताओं के वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से पुरोहिती कर्म करने लगे। तात्पर्य समाधिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन से पूर्णतया तल्लीन होना। विश्वरूप अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। उसने न केवल देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की वरन उनकी प्रार्थना को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया और अविचल चित्त से पुरोहिती कर्म करने लगा। तात्पर्य यह है कि उसने किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं वरन देवताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पुरोहित स्वीकार की। यह पुरोहित का कर्तव्य है। अतः पुरोहित शब्द का तात्पर्य है परिवार का हित करने वाला। पुरह शब्द का दूसरा अर्थ परिवार और हित का अर्थ कल्याण है। पुरह शब्द का अर्थ है प्रथम। पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार से अपने शिष्यों का आध्यात्मिक तथा आर्थिक लाभ सोचे, तभी वह संतुष्ट रहता है। पुरोहित को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए।
हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बताया गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप सब लोग रविवार के दिन अपने शेड्यूल से समय निकालकर भागवतम सुनने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम की महिमा अनेक पुराणों में और श्रीमद् भागवतम में भी बताई गई है और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम भागवतम को अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो भागवतम के प्रत्येक पृष्ठ पर हरेक पन्ने पर हम श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था तो कलयुग के प्रारंभ में कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए सभी ऋषिगण एकत्रित हुए नैमिषारण्य में और वो यज्ञ कर रहे थे कि कैसे कलयुग के लोगों का उद्धार होगा। तो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए हैं तो धर्म किसका आश्रय लेगा। तो फिर ये उत्तर दिया गया सुत गोस्वामी के द्वारा कि धर्म किसका आश्रय लेगा, श्रीमद भागवतम का। तो शिल प्रभुपाद जी की हम पर असीम कृपा है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये ग्रंथ उपलब्ध है और एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हम श्रीमद भागवतम को समझने का यानी श्री कृष्ण को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है, इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। इंद्र देवताओं के राजा हैं। इस संसार में दो श्रेणी के लोग हैं, असुर और सुर। असुर वो हैं जो कि भगवान की आज्ञाओं का अवहेलना करते हैं और देवता वो लोग हैं जो भगवान की आज्ञा पालन करने का प्रयास करते हैं। इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं, लेकिन इंद्र के द्वारा अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध हो गया। एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे थे सच्ची माता उनकी जो धर्मपत्नी है उनके साथ और खूब ऐश्वर्य में थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी, चामर झुलाया जा रहा था, तो बड़े सिंहासन पर इंद्र बैठे थे, नृत्य चल रहा था, इंद्र का गुणगान हो रहा था। तो कौन व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहेगा। उसी सभा में तभी उनके गुरु बृहस्पति आते हैं। तो इंद्र का एक कर्तव्य होना चाहिए था कि अपने गुरु को देखकर वो अपने आसन से उठते और गुरु के सामने अपना गुणगान नहीं सुनते। अपने से शेष व्यक्ति के सामने हमें अपना गुणगान नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये एक नियम है कि अर्च विग्रह के सामने किसी और का हमें गुणगान नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के सामने हमें किसी सीनियर को या किसी वैष्णव को हमें प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। अगर गुरु ही हमारे सामने आए तो अर्च विग्रह के सामने हमें उनको झुककर हरे कृष्णा कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने उससे जो कनिष्ठ है उसको हम आदर देते हैं तो उस वरिष्ठ के प्रति वो अपराध होता है। तो सभी के सभी गंधर्व किन्नर और सब लोग इंद्र का गुणगान कर रहे हैं और बृहस्पति उस सभा में आए और इंद्र अपने आसन से उठे भी नहीं और उन्होंने ये सही ढंग से अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो ये बृहस्पति के प्रति अपराध हुआ। बृहस्पति वो सभा छोड़कर चले गए। तो जब कभी हम किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध करते हैं तो आध्यात्मिक नुकसान के साथ साथ भौतिक हानि भी होती है। हम सभी अपना ऐश्वर्य खो बैठते हैं, अपना रेपुटेशन, अपना यश, धन, सब कुछ खोना पड़ता है। और यही इंद्र के साथ हुआ। बृहस्पति जब इंद्र से नाराज हुए तो इंद्र जो देवताओं के राजा थे वो अपना सारा ऐश्वर्य खो बैठे। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया और इंद्र को अपना सिंहासन खोना पड़ा। उसके बाद इंद्र ने बहुत पश्चाताप किया, वो बृहस्पति को ढूंढने गए लेकिन बृहस्पति की शरण प्राप्त नहीं कर पाए। फिर वो ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को बहुत डांटा कि आपसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो बोले क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि किसी न किसी पुरोहित की शरण में आपको रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इस संसार में हर किसी व्यक्ति को एक ब्राह्मण की शरण में अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। क्या ठीक है क्या गलत है इसका निर्णय करना एक बद्ध जीव के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। तो एक ब्राह्मण और एक पुरोहित का कर्तव्य है कि वो सबका मार्गदर्शन करे। तो ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि त्वेष्टा के पुत्र विश्व रूप की आपको शरण ग्रहण करनी पड़ेंगे। तो सभी देवतागण विश्व रूप की शरण में गए, उनको बोला कि आप यज्ञ कीजिए और पुरोहित ही स्वीकार कीजिए। विश्वरूप आयु में सभी देवताओं से छोटे थे और सभी देवतागण उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप हमारे पुरोहित बनिए। तो विश्वरूप के लिए भी एक अजीब सी परिस्थिति थी और विश्वरूप पुरोहित बनना नहीं चाहते थे। पिछले के श्लोक में बताया गया है कि अगर हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करें और उसमें यजमानी करें तो यजमानी करने से हम अपना ब्रह्म तेज खो बैठते हैं। अगर हम कोई यज्ञ करते हैं और उसमें से कुछ आर्थिक लाभ या कुछ लाभ अपने लिए प्राप्त करते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठते हैं। ये बहुत सुंदर संदेश था। तो इसलिए विश्वरूप घबरा रहे थे कि मैं ये पुरोहिती स्वीकार नहीं करूंगा। हम लोग भी श्री हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ते हैं और जैसे ही हम भक्ति प्रारंभ करते हैं इस भक्ति को करने के लिए गुरु की सेवा करने के लिए हमें तरह तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि कोई भी सेवा करने है उसके लिए कुछ फैसिलिटीज चाहिए, धन चाहिए, साधन चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो सबका सब हमें उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए ताकि हम श्रील प्रभुपाद जी के इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा सके। लेकिन हमें जब सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन सुविधाओं को हम अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ना इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठेंगे और उस फैसिलिटीज से हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है। अगर हम सेवा करते हैं, सेवा से ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति अमाम अभी जाना यावश्यास्मि तत्पता, सेवा करने से ही हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। लेकिन जब सेवा करते हैं तो सेवा के साथ साथ जो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं, जो साधन प्राप्त होते हैं, उस सेवा को करने के लिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि उन साधनों को हम अपने व्यक्तिगत उपयोग ना करें। अन्यथा क्या होगा कि जो सेवा का लक्ष्य है उससे हम विचलित हो जाएंगे। भक्ति का मार्ग बहुत ही तंग है, संकीर्ण है और बहुत ही लंबा है और दोनों तरफ खाई है। देखते हैं ना सर्कस में टाइट रोप वॉक, एक रस्सी के ऊपर व्यक्ति चल रहा है, तो भक्ति का मार्ग वैसा है। तो बहुत एक एक कदम हमें फूक फूक के रखना चाहिए कि क्योंकि हर कदम पर पदम पदम यत विपदम, एक एक कदम पर खतरा है। तो एक खतरा केवल बाहरी रूप से नहीं है, स्थूल रूप से ही नहीं है, ये खतरा सूक्ष्म रूप से माया जो है, भगवान की भयंकर शक्ति हर कदम पर हमें एक विकल्प देती है, एक ऑप्शन देती है कि आप मेरा भोग कीजिए। और तब हमारी परीक्षा होती है कि हम अंतरंगा शक्ति को चुनते हैं कि बहिरंगा शक्ति को चुनते हैं। हर एक भक्त के साथ हर क्षण ये परीक्षा चल रही होती है कि हम अंतरंगा शक्ति की शरण में आना चाहते हैं कि बहिरंगा शक्ति की शरण में आना चाहते हैं। तो उस समय हमें बहुत सावधान होना चाहिए, हमेशा अंतरंगा शक्ति को चुनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये च्वाइस, ये विकल्प, एक हम क्योंकि तटस्था प्रकृति से हैं तो हमारे पास ये हमेशा ऑप्शन रहता है कि हम कौन सी प्रकृति के संरक्षण में रहना चाहते हैं। तो विश्व रूप बहुत घबरा रहे हैं कि अगर मैं पुरोहित का कार्य करूंगा तो मेरा कहीं पतन ना हो जाए। तो ये डरना एक भक्त के लिए अति आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे अपने शिष्यों से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ये लोग माया से नहीं डरते। हमें माया से डरना चाहिए। देवी ऐश्वर्य गुणमयी मम माया दुरत्यया, वो भगवान की प्रकृति है, देवी प्रकृति है। जैसा कि बहुत प्रसिद्ध कथा में हम जानते हैं कि जब व्यासदेव जी ने वेदों की रचना की, व्यासदेव जी ने एक श्लोक लिखा कि एक योगी को, एक साधक को किसी भी स्त्री के साथ एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपकी माता या बहन भी क्यों ना हो। बड़ा बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो जैमिनी ऋषि ने बोला ये कैसी बात कर रहे हो, माता और बहन के साथ एकांत स्थान में रहने क्या समस्या है। तो फिर क्या होता है, आप सब जानते हैं कि किस ढंग से जैमिनी ऋषि भ्रमित होते हैं। तो हमें भक्ति के मार्ग में कभी भी, इसे कहते हैं कंप्लेसेंट, से हिंदी में इंग्लिश में शब्द है, कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल अनुभव करने का, चलो अब तो ठीक है, और तभी हम माया की चपेट में आ जाते हैं। तो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तो विश्व रूप बहुत हिचकिचा रहे थे, लेकिन सब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की तो विश्व रूप ने इस सेवा को स्वीकार किया, सेवा के रूप में स्वीकार किया। तो जब कोई वरिष्ठ गण हमसे प्रार्थना करें और हमें एक ये खतरा अगर समझ लेना पड़ता है तो उसको हमें बहुत ही सोच समझ कर उस सेवा को हम स्वीकार कर सकते हैं। तो आज के श्लोक में यही बताया जा रहा है कि विश्व रूप ने देवताओं के इस आग्रह को स्वीकार किया। तेभ्य एवर प्रतिश्रुत्य विश्व रूपो महातपा पौरहत्यम वितश्चक्रे परमेण समाधिना। देवताओं को यह वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्व रूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से पुरोहिती कर्म करने लगे। इसे पिछले का जो श्लोक है उसमें तात्पर्य नहीं था, 37वां नंबर श्लोक। तो विश्वरूप बता रहे हैं कि आप सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहिती को स्वीकार करना निंदनीय है, मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूं, मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। तो विश्व रूप ने उनके देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और पुरोहित करना उन्होंने शुरू कर दिया। और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो पुरोहित करके वो इंद्र को मंत्र देते हैं, वो मंत्र है नारायण कवच। उस मंत्र का उच्चारण करके इंद्र फिर से असुरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद हमें तात्पर्य बता रहे हैं कि उसने किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं वरन देवताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पुरोहित स्वीकार की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कोई भी आध्यात्मिक क्रिया अगर करते हैं तो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करके जन साधारण के आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से हमें करना चाहिए, तभी हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। पुरोहित शब्द का तात्पर्य है परिवार का हित करने वाला। पूरा शब्द का दूसरा अर्थ है प्रथम। पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार से शिष्यों का आध्यात्मिक तथा आर्थिक लाभ सोचे, तभी वह संतुष्ट रहता है। तो बात की एक वाक्य में बहुत शक्ति है। तो जब तक हम दूसरों के लाभ के बारे में नहीं सोचेंगे, हम हमेशा विचलित रहेंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में दुख हैं, सफरिंग्स हैं, प्रभुपाद कहते हैं सफरिंग इज अ रिएक्शन ऑफ अवर टेंडेंसी टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ दुख प्राप्त हो रहा है, हमारा मन दुखी है, हम परेशान हैं, तो इसका कारण क्या है कि हम भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। मनःष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, संघर्ष कर रहे हैं अपने मन और इंद्रियों के साथ, इस भौतिक प्रकृति के साथ। लेकिन हम लोग इस तरह से विमूढ़ हो जाते हैं रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आकर कि हम सोचते हैं नहीं, मेरे इस कष्टों का कारण शायद कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति है। वास्तव में हमारे कष्टों का कारण है कि हम इस भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं, प्रभुत्व जमाने का अर्थ है कि हम चाहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी फैसिलिटीज हैं, वो सब के सब मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए हैं। चंद्रमा, वरुण, जितने भी देवतागण 33 करोड़ देवता हैं, वो वास्तव में सबके सब मेरी सेवा के लिए हैं। घर भर में हम देखते हैं पति और पत्नी हैं, पत्नी की अपेक्षा है पति से कि ये मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करे, पति की ये अपेक्षा है पत्नी से कि वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे। बच्चे माता पिता से इच्छा रखते हैं कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, माता पिता बच्चों से ये रखते हैं कि बड़ा होकर जो मैं नहीं कर पाया वो ये कर ले। हर कोई एक दूसरे से इच्छा रख रहा है, आशा रख रहा है कि ये जो मेरी कमियां उसको पूरी करेगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। मेरा जन्म हुआ है, मुझे शरीर मिला है ताकि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। नहीं, हर व्यक्ति ये अपेक्षा कर रहा है कि ये व्यक्ति मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मेरा सहयोग दे। ये एक साधारण मानसिकता है और इसी कारण से इस संसार में क्लेश मचा हुआ है। हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है अगर अपने मन को संतुष्ट रखना चाहते हैं तो हमें दूसरों के लाभ के लिए सोचना चाहिए। विशेषकर जो ब्राह्मण है उसे बताया गया कि अपने शिष्यों के आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ के विषय में सोचना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। एक ब्राह्मण को हमेशा बहुत दरिद्रता में रहना चाहिए। एक ब्राह्मण अगर बहुत ही ऐश्वर्य में जीवन बिताएगा तो कभी वो भगवान का चिंतन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐश्वर्य मद होकर ही इंद्र ने अपने गुरु के प्रति अपराध किया। इसलिए एक ब्राह्मण को ब्राह्मण अपनी स्वेच्छा से दरिद्रता का स्वीकार करता है, क्योंकि अगर वो स्वेच्छा से दरिद्रता स्वीकार नहीं करेगा तो वो इसका साक्षात्कार नहीं कर पाएगा कि ये भौतिक जगत दुखाल्य है। और जब तक वो साक्षात्कार नहीं कर पाएगा वो अपने शिष्यों को और जन साधारण को इसका संदेश भी नहीं दे पाएगा, उसका प्रचार भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम अपने आप को क्या रखें। कोई रखना चाहता है अपने दरिद्र अवस्था में? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। फिर बात कर रहे हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर मांग क्यों रहे हैं? हम पहले भगवान से मांग रहे हैं, उस बोले भगवान आपको अर्पण करेंगे। किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? इसमें से कौन हमारे संसार में ऐसा व्यक्ति है जो दरिद्रता स्वीकार करना चाहेगा? इसे कोई भी नहीं करना चाहेगा। और बोला गया दरिद्रता तो अभिशाप है, महात्मा गांधी जी कहते थे दरिद्रता अभिशाप है। और हमारे यहां पे बताया जा रहा है कि दरिद्रता स्वीकार करनी चाहिए, तभी हम भगवान को याद कर सकते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन जो बिल्कुल भौतिक दृष्टि से एकदम जिसे कहते हैं नकार दिया गया है संसार से, उसकी संपत्ति क्या है? कृष्ण, उसकी संपत्ति कृष्ण है। जिसके पास धन है, जिसके पास सुंदरता है, जिसके पास बहुत ऊंची विद्या है, और क्या है, ऊंचे कुल में जन्म है, वो लोग कभी भी कृष्ण को हृदय से नहीं पुकार सकते, कंफर्टेबल है। इसीलिए बोला जाता है ए धन जीवन ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे के आछे पर तीति रे, जीवन टलमल कमल दलमल एथे के आछे पर तीति रे। भागवतम दूसरे स्कंध में बताया गया है कि हम लोगों ने अपने सैनिक पाल रखे हैं। कौन से सैनिक हैं? मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरी रक्षा करेगा, कोई रक्षा नहीं करेगा, सबके सब यही रह जाएंगे। इसलिए दरिद्रता स्वीकार, यानी कि जितना हो सके हमारा जीवन सरल होना चाहिए, सरल से सरल जीवन होना चाहिए, सादा जीवन, ऊंचे विचार। ये संभव नहीं है ऊंचा जीवन के साथ ऊंचे विचार हम नहीं रख सकते। कोई बोले प्रभु जी ऊंचा जीवन ऊंचे विचार में क्या दिक्कत है? ऊंचे जीवन के साथ, हाई स्टैंडर्ड लिविंग के साथ हम अच्छे विचार नहीं रख सकते। इंद्र के साथ कितनी बारी ऐसा हुआ? एक बार नहीं, अभी बृहस्पति का कर रही अपमान, कभी कृष्ण से पंगे ले लेते हैं, बृहस्पति क्या कृष्ण को भी कुछ नहीं समझते, हम भगवान को भी कुछ नहीं समझते। ये रजोगुण का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है, ऐश्वर्य मद हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं हम लोग। जब हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ते हैं तो हम पहले एक एक भक्त को झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। किसी भक्त ने शिखा रखी है तिलक लगाया, बहुत महान भक्त है, प्रणाम करते हैं, आप महान हैं, अपने आप को बिल्कुल निकृष्ट मानते हैं। धीरे 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 क्या होता है हम सब जानते हैं, पहले सबका सेवक सेवक सेवक, फिर हमें भी दीक्षा मिल जाती है, हमारे नाम के आगे दास लग जाते हैं, तो हमें बोलते हैं, फिर धीरे लोग हमें प्रभु कहना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने आपको महाप्रभु समझना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं बहुत, और फिर हमसे अपराध होते हैं। तो ये सबकी ये स्टोरी है। जैसे बहुत ही जगत में कोई प्रोडक्ट आता है तो मैनेजमेंट बताते हैं उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, शुरू शुरू में ग्रो करता है, बहुत ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे आता है। तो हम लोग भी क्योंकि भौतिक धारणाओं के साथ आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं तो सबके साथ अधिकांशता ये होता है, ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हम इन ऐश्वर्यों को हैंडल नहीं कर सकते, दिमाग घूम जाता है, हम इनको हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए त्यागे इसको, जितना जीवन सरल लग सके उतना अच्छा है। जितना हम अपनी आत्मों को तपस्या करते रहें ताकि इन पर हम निर्भर ना रहें उतना अच्छा है। लेकिन आज की दुनिया में हम लोग कंपटीशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम धन बटोरें, ऐश्वर्य बटोरें, उससे क्या होगा, हम भगवान को भूलते हैं। जितनी भी भौतिक धारणाएं हैं, अगर उन भौतिक धारणाओं के साथ अपना जीवन चलाएंगे तो इसी भौतिक जगत में ही रहेंगे। जो कि इस विश्व में प्रसिद्ध धारणाएं हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, आशीर्वाद यही देते हैं, तो बेसिकली यही आशीर्वाद देने कि इसी भौतिक जगत में ही रहो। तो अगर आध्यात्मिक जगत में जाना है तो आध्यात्मिक धारणाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, और जो कि बहुत ही पॉपुलर जो प्रसिद्ध धारणा है उनको त्यागना पड़ेगा, दरिद्रता स्वीकार करनी पड़ेगी। खुशी खुशी ब्राह्मण अपनी स्वेच्छा से दरिद्रता स्वीकार करता है। सुदामा जब कृष्ण के पास गए, कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बोला अच्छा है, अगर भगवान मुझे ऐश्वर्य देते तो मैं भगवान को भूल जाता। लेकिन जब वापस आए तो देखा भगवान अपने आप दे रखे, उनकी इच्छा नहीं थी उसको स्वीकार करने की। तो ये संदेश हमें मिलता है, और हमेशा हम प्रयास करें दूसरों के लाभ के बारे में सोचें। चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर जिस देश के राजा महलों में रहते हैं, वहां की जनता झोपड़ियों में रहती है, और जिस देश के मंत्री झोपड़ी में रहते हैं वहां की जनता महलों में रहती है। चाणक्य पंडित झोपड़ी में रहते थे, बिल्कुल अपने लिए कोई भी वो ऐश्वर्य स्वीकार नहीं करते थे और हमेशा जनता के भले के बारे में सोचते थे, खुद बड़ा सादा जीवन व्यतीत करते थे। आज के राजनेताओं को देखें, मंत्रियों को देखें, सब बड़े बड़ी कोठियों बंगलों में रहते हैं और जनता बेचारी जे जे कॉलोनी में रहती है, बिल्कुल उल्टा है। इस ढंग से हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास उदाहरण है इतिहास में। तो जितना सादा जीवन हम बिताएंगे उतने हम ऊंचे विचार रख सकते हैं, लेकिन आजकल हम सोचते हैं कि सादा जीवन संभव ही नहीं है। ऐसे ऐसे मोबाइल फोन आ गए हैं, ना चाहते हुए भी आपको फैसिलिटीज दी जा रही है, आप इंटरनेट देखिए, आप गेम्स खेलिए, किसी भी तरह के चित्र आप देख सकते हैं छोटे से मोबाइल फोन पर, कुछ भी कर सकते हैं। घर घर में इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं और अब बचपन से ही व्यक्ति को इस सारी वस्तुएं मिलती हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो मानसिकता है दूषित हो जाती है, वो कैसे वो अध्यात्म को स्वीकार कर सकता है। लेकिन जो वैष्णवगण, जो प्रभुपाद जी के हम शरण में आए हैं और हम शास्त्रों के माध्यम से हम समझे कि बहुत आवश्यक है हम सादा जीवन बिताएं, बहुत ही आवश्यक है। अब सादा जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हम जानबूझकर फटे कपड़े डालें, ऐसे भिखारियों की तरह घूमना शुरू कर दें। नीचा जीवन नीचे विचार में नहीं चलेगा, ऊंचा जीवन ऊंचे विचार में नहीं चलेगा, सादा जीवन ऊंचे विचार चलेगा। तो इसके लिए, ऊंचे विचार रखने के लिए एक ब्राह्मण की शरण में रहना अति आवश्यक है। जैसे बताया गया, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को भेजा कि आप विश्व रूप की शरण ग्रहण करो, किसी न किसी की शरण में रहना अति आवश्यक है, उसको पुरोहित रूप में स्वीकार करो। तो ऊंचा जो विचार हमें देंगे वो हमें वैष्णवगण देंगे, ब्राह्मण देंगे, और सादा जीवन भी हमें स्वीकार करना चाहिए। शिला प्रभुपाद को हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कितना साधारण जीवन जिया। प्रभुपाद जब वृंदावन में थे राधा दामोदर मंदिर में, हम सबने उनका कमरा देखा कहां प्रभुपाद रहते थे, और प्रभुपाद जब मधुकरी भी करते थे तो मधुकरी करते हुए प्रभुपाद अपने लिए दाल आटा चावल नहीं मांगते थे, प्रभुपाद मधुकरी बीख में कागज मांगते थे ताकि इन कागजों के ऊपर वो ग्रंथ लिख सके। प्रभुपाद थर्ड क्लास के डब्बे में मथुरा से दिल्ली आते थे और फिर वो रिक्शा भी नहीं करते थे, अपने सर पर सारे कागज लाद कर चावड़ी बजा जाते थे प्रिंट करवाने। सुबह सुबह कुछ खाया नहीं होता था, खाली पेट आते थे। जो प्रकाशक है वो लगता है स्वामी जी आपने कुछ पाया नहीं, आप कुछ खाना भोजन स्वीकार कीजिए, तो प्रभुपाद कहते नहीं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद फिर प्रिंटिंग कराते थे, उसकी प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर उसको बांटने जाते थे, केवल सादा जीवन। प्रभुपाद जब अमेरिका जाने लगे तो वहां लोगों ने उनको बताया कि इस जंग से धोती कुर्ता में जाओगे कोई भी नहीं संभालेगा आपको, आप पैंट शर्ट डालिए और छुरी कांटा सिखाना सीखिए। प्रभुपाद बोला मैं उनको वैदिक संस्कृति सिखाने जा रहा हूं, कैसे हाथ से खाना है और कैसे धोती कुर्ता डालना है, कैसे चोटियां रखनी है, और ये प्रभुपाद ने सिखाया। सादा जीवन ऊंचे विचार, कितना मुश्किल होगा आप सोचिए। जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में पहुंचे तो प्रभुपाद ने मुझे कहते हैं कि इतना भीड़ स्थान है, इट्स जस्ट लाइक ए डॉग स्टूल, कुत्ते के मल के समान है ये समान। और हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग कब न्यूयॉर्क में जाएंगे, बिजनेस सेटल करेंगे, क्या चाहते हैं। प्रभुपाद को स्थान कुत्ते के मल के समान लगा, इतना बेकार स्थान है, कैसे मैं लोगों को ट्रेन करूंगा। नहीं, प्रभुपाद ने सबको ट्रेन किया, सारा जीवन सिखाया। और जब प्रभुपाद के कई शिष्य बने और फिर प्रभुपाद जब गुरु आते थे एयरपोर्ट में तो कई बार प्रभुपाद को रिसीव करने बाद में रॉल्स रॉयस गाड़ी आई, बहुत सुंदर गाड़ी, तो जो जर्नलिस्ट थे वो प्रभुपाद से ईर्ष्या करने लगे कि इतने देखो ये कैसे गुरु हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, देखो खुद कैसे घूमते हैं। उन्होंने बोला कि आप इतने ऐश्वर्य में जीवन क्यों बिताते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ये तो लोहे की गाड़ी है, गुरु को लेने के लिए सोने की गाड़ी भी आई वो भी बहुत कम है, आप लोग मुझसे ईर्ष्या क्यों कर रहे हो। कहने का अर्थ ये है कि जब प्रभुपाद को ऐश्वर्य भी प्राप्त हुए तो प्रभुपाद उनसे आसक्त नहीं हुए, प्रभुपाद ने जो ऐश्वर्य मिले वो सब के सब भगवान की सेवा में लगाए। अपनी सेवा में प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं लगाया। प्रभुपाद ने संस्था का नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कहीं अपना नाम इसमें नहीं डाला। प्रभुपाद को कुछ भी नहीं चाहिए था इस संस्था से, तो प्रभुपाद ने जो भी किया पूरी जनता के भलाई के लिए किया। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा एक परम कर्तव्य है कि हमें प्रभुपाद का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जब इस संदेश पहुंचाने की हम सेवा रखते हैं, प्रचार की सेवा रखते हैं, उसमें हमें जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं उन सुविधाओं को हम व्यक्तिगत रूप के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए ना करें। हम कहीं भी जाते हैं लोग हमें धन देते हैं, तो ये उस प्रचारक का परम कर्तव्य है कि ये धन सीधा भगवान की सेवा में ही जाए। इस धन का अगर हम कुछ भी हिस्सा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते हैं, तो श्री कृष्ण एकादश कंध में उद्धव को बता रहे हैं कि जो कृष्ण के लिए अर्पित भोग में से अगर कुछ अपने लिए भोग के लिए स्वीकार करता है, तो उसके अगर कई जन्मों तक उसे मल का कीड़ा बनना पड़ता है। ये इतना सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि जो कुछ भी भगवान की सेवा के लिए हमें दिया जा रहा है, जो लोग अपनी श्रद्धा हमें ले रहे हैं कि ये भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमें केवल माध्यम बनना है उसको भगवान की सेवा में पहुंचाने के लिए। इसी ढंग से जो हम गुरु से आदेश प्राप्त करते हैं वो भी हमें माध्यम बनना है जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से एक पारदर्शक माध्यम बनने से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और जो जनसाधारण है, जब हम किसी भक्त के संपर्क में आते हैं जो कि प्रचार कार्य कर रहे हैं, तो जैसे कल बिना प्रसाद प्रभु भी प्रवचन बता रहे थे, तो जो गृहस्थ आश्रम रहने वाले भक्त हैं उनका एक कर्तव्य है कि वो इस ढंग से दान दें कि उस प्रचारक का कोई पता ना हो जाए। कई बार हम सेंटिमेंटल होकर, भावुक होकर भक्तों को हम चाहते हैं कि सेवा करें, उनको हम धन देते हैं और से बहुत से वस्तुएं देते हैं, तो हम तो सोच रहे हैं कि हमने बहुत सेवा कर दी, लेकिन हो सकता है कि वो भक्त थोड़ा सा परिपक्व ना हो, उस धन का उपयोग अपने सेवा में लगाए और उसका आध्यात्मिक पतन हो। तो ये बातें बहुत गंभीर हैं। सेंटीमेंट्स और सेंटीमेंटल होने में बहुत अंतर है। भक्ति में निश्चित रूप से भावुकता होना आवश्यक है, लेकिन वो भावुकता शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। अपने मन के हिसाब से हम चलेंगे तो हम भी पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, और जिन भक्तों के हम संपर्क में हैं वो भी पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जो हम सब प्रभुपाद जी के इस प्रचार आंदोलन में जुड़े हैं, ये हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रचार के आंदोलन में हमें तरह तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उन सुविधाओं को बहुत ध्यानपूर्वक हम उपयोग करें। हमें देखें कि सारी की सारी सुविधाएं केवल कृष्ण के लिए हैं, और जितना हम तपस्या स्वीकार करेंगे, जितना हम सादा जीवन जिएंगे, उतना आसान होगा हमारे लिए कृष्ण को स्मरण करना, और उतना हमारा मन संतुष्ट रहेगा। हम देखते हैं सर्दियों में हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, और कभी गीजर खराब हो जाए, मंगल आरती का समय हो, क्या होता है? हमारे पास विकल्प होते हैं, क्या करें, मंगल आरती जाएं ना जाएं, तो गीजर ही खराब है, इतनी ठंड में कैसे नहाऊं? नहीं, किसी को आधा ठंडे पानी से ही नहाने की कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सादा जीवन है। जितना हम इन मशीनों पर निर्भर करेंगे उतना हमारे लिए मुश्किल होगा। घर में वॉशिंग मशीन रखी हुई है, आजकल का जीवन देखिए ना कितना आर्टिफिशियल जीवन है। वॉशिंग मशीन है, उसमें किचन में मिक्सर है, सब कुछ है, माइक्रोवेव है, सब कुछ बटन दबाते घर 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 हो जाता है। उसके बाद फिर लोग जिम में जाके फिर हाथ हिलाते हैं, जिम में जाके लोग एक्सरसाइज करते हैं। पहले समय में चक्की पीसते थे, कपड़े धोते थे, अपने आप सब शरीर स्वस्थ रहता था। अब सब बैठे बैठे इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, मोटापा बढ़ जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा, डॉक्टर बोले एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, वो करना है, लेकिन इन मशीनों पर निर्भर है। लोग बाग में भी सैर करने जाते हैं, वॉकिंग, तो गाड़ी में जाते हैं। देखिए गाड़ी में बैठ के फिर भागेंगे कि यहां पसीना निकालना है। अरे पसीना निकालना है तो वैसे भी निकल सकते, अगर मेहनत करेंगे तो निकलेगा पसीना। तो ये कितना आर्टिफिशियल हमारा लाइफस्टाइल है, कितना आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है। और इस आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से हम जितना फैसिलिटीज पर निर्भर रहते रहेंगे, हम बिल्कुल छोटी सी हमसे सुविधा छीन ली जाए हमारा मन विचलित हो जाता है। छोटी सी सुविधा भी छीन ली जाए, हम इतना निर्भर हो गए। तो इसलिए अपने को, अपने जीवन को हम बिल्कुल सरल रखें। और जितना सरल रखेंगे उतना हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे और उतना हम माध्यम बन पाएंगे किसी दूसरे के लाभ के। हरे कृष्ण। आज एक्चुअली ना प्रवचन इसके श्री कृष्ण ही प्रभु का था और गाड़ी इनकी पंचर हो गई थी तो फिर अब सबको मुझे सहन करना पड़ा। किसी कोई प्रश्न है तो मुझे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे श्री कृष्ण? किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी? ऐसा क्यों नहीं बोला कि
धर्म ने कहा कि कुछ नहीं, लोग ने कहा श्रीमद् भागवत में कुछ नहीं, तो उस टाइम तो भगवत गीता भी भगवान ने बोली थी, तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि
नहीं कहा? भागवतम भगवान की लीलाओं के विषय में है, भगवान के नाम गुण रूप लीला में कोई अंतर नहीं है, तो भागवतम की अपनी महिमा है। भागवतम में पूरे जो वेदांत सूत्रों की ये कमेंट्री है और जो भगवत गीता है वो हालांकि श्री कृष्ण ने सारे वेदों का सार भगवत गीता है, लेकिन भागवतम में हम भगवान के अन्य अवतारों के विषय में भी जानते हैं और भागवतम को तुलना पूरे भगवान के पूरी दिव्य देह से की गई है। पहले प्रथम दूसरे स्कंद, प्रथम स्कंद को भगवान के चरण कमल बताए गए हैं, दशम स्कंद को भगवान का मुखारविंद बताया गया है। इस ढंग से भागवत की अपनी महिमा है। भक्त और भगवान दोनों संबंधित है आपस में। ऐसा नहीं है भक्तों को आदत दे रहे हैं तो उनको भगवान से अलग देख रहे हैं, और भगवान भक्तों के बिना नहीं है, भक्त भगवान के बिना नहीं है। थोड़ा आपको मैच्योरिटी से देखना पड़ेगा। जो भक्त हैं वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, भक्त भगवान के ही सेवक हैं, तो एकदम अलग देखना ये तो भक्त और भगवान का तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, अलग कैसे देख सकते हैं? हम भक्तों की सेवा ही कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा हम कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अटी उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। तो अभी आपको निर्भर करता है कि किस ढंग से आप सेवा करते हैं, तो आप किसी के मार्गदर्शन में रहकर आप सेवा कीजिए, हो सकता है उससे आपको लाभ मिले। तो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की नेताए गौर प्रेमानंद है।